समागत देवियों और सज्जनों, विगत कल केनोपनिषद पर चर्चा प्रारंभ करते हुए हमने उसकी पृष्ठभूमि पर विचार किया था। शिष्य एक प्रश्न लेकर के उपस्थित होता है गुरु के पास, उसे ऐसा लगता है कि नेत्र, कान ये सब तो जड़ हैं, मन भी जड़ है, पर मन अपने विषयों की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, ये ज्ञानेन्द्रियां भी अपने विषयों की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं, तो किसकी इच्छा से और किसकी प्रेरणा से यह सारा कार्य होता है? यह जो जिज्ञासा है, इसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जिज्ञासा की विशिष्टता है। विज्ञान में भी जिज्ञासा है, साइंस में भी सत्य की खोज है, और अध्यात्म भी सत्य की खोज करता है। दोनों में एक मौलिक अंतर है। वह अंतर यह है कि विज्ञान बाहर से इस इंद्रिय ग्राह्य जगत में सत्य की खोज करता है, जबकि अध्यात्म भीतर की ओर सत्य को खोजने के लिए जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यहां भी मनीषियों ने सत्य को बाहर खोजने की चेष्टा की, पर वह मिला नहीं, इसीलिए वे भीतर की ओर गए, मनस तत्व का विश्लेषण किया और यह जानने की चेष्टा की कि कॉन्शियसनेस क्या है, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, वह वस्तुतः क्या है। कॉन्शियसनेस की खोज आज विज्ञान भी कर रहा है, यह मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है और वैसे बायोलॉजी के क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों ने चेष्टा की कि किस प्रकार इस कॉन्शियसनेस के तत्व को जाने, पर अभी तक वह पकड़ में तो आया नहीं। पियरे टेलार डी शार्डिन या शार्डन, CHARDIN, ये बड़े एक वैज्ञानिक हो गए हैं, पैलियंटोलॉजिस्ट, सर्जन और पादरी। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। इनकी एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध हुई है, द फेनोमेनॉन ऑफ मैन, और वहां पर उन्होंने मनुष्य को समझने का प्रयास किया है कि मनुष्य क्या है। दो स्तरों पर वे यह प्रयास करते हैं। एक स्तर वह है जहां वे मनुष्य को पशु से पृथक करने की चेष्टा कर रहे हैं कि मनुष्य किन अर्थों में पशु से भिन्न है। एक दूसरा अर्थ और स्तर यह है कि जहां वे जड़ और चेतन में भेद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो चैतन्य दिखाई देता है पशु और मनुष्य के भीतर, जो किसी जड़ वस्तु में दिखाई नहीं देता, यह चैतन्य या कॉन्शियसनेस क्या है, उनका एक वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण, वे कहते हैं कि कॉन्शियसनेस कैन नेवर बी एक्सपीरियंस्ड इन प्लूरल। चैतन्य का अनुभव बहुवचन में कभी नहीं होता, उसका अनुभव एक वचन में ही होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहां भी चैतन्य का स्पंदन दिखाई देता है, भले ही वह स्पंदन असंख्य नाम रूपों के माध्यम से हो, तो नाम और रूप में असंख्यता हो सकती है, पर जिस चैतन्य के माध्यम से ये नाम और रूप चैतन्य मालूम पड़ते हैं, वह अंतर्निहित चैतन्य सिंगुलर है, वह केवल एक है। और इस प्रकार उन्होंने कॉन्शियसनेस की दो धारणा हमारे समक्ष रखी, वह ठीक हमारी धारणा के साथ मेल खाती है। तो यहां जो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है, पूछने का तरीका विलक्षण है। उसे ऐसा लगता है कि एक चैतन्य तत्व है, संसार तो दिखाई देता है, पर दिखाई देने वाला संसार जड़ है। मेरा शरीर आज चैतन्य दिखाई देता है, जिस दिन मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा यह तो मुर्दा पड़ा रहेगा, चैतन्य वहां पर नहीं है। तो वह चैतन्य था, किसी एक शक्ति के कारण दिखाई देता था, वह शक्ति नहीं दिखाई देती तो वह मुर्दा पड़ जाता है। संसार में जितने भी रूप दिखाई देते हैं वे सब इसी प्रकार के हैं। तो यह शिष्य उस चैतन्य तत्व को जानना चाहता है कि वह कॉन्शियसनेस क्या है, और इसलिए वह पृच्छा करता है, प्रश्न पूछ रहा है, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, यह मन जो जाता है अपने विषयों की ओर किसकी इच्छा से और किसकी प्रेरणा से। मानो उसी चैतन्य को पकड़ने की इच्छा, प्रश्न के माध्यम से, केन प्राणः प्रथमः प्रतियुक्तः, इस प्रथम प्राण को किसने इस प्रकार से प्रेरित किया है कि वह प्राण चलता है। केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, वाचा बोलती है तो किसकी इच्छा से बोलती है। आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो यह एक विलक्षण साधना का सूत्र हाथ में आता दिखाई देता है कि साधक बस बैठा है, भले ही यहां पर वह गुरु से प्रश्न करता दिखाई देता है, परंतु हम ऐसा भी मान सकते हैं कि वह अपने आप से ही पूछ रहा है। अच्छा, यह जो मन विषयों की ओर जाता है किसकी इच्छा से जाता है, जैसे मैं अपने मन में यह प्रश्न पूछ रहा हूं, आंखें देखती हैं तो किसकी इच्छा से देखती हैं, ऐसा विचार मैं करता हूं और मैं गहराई में उतरता हूं, अपने भीतर जाने की चेष्टा करता हूं। भौतिक विज्ञान बाहर के संसार को देखता है और बाहर से सत्य को पाने की चेष्टा करता है, पर यह जो अध्यात्म का विज्ञान है, यहां तो मनुष्य को अपने भीतर जाना होता है, मन क्या है इसकी समझ लेनी पड़ती है। तो इस प्रक्रिया से मानो साधक भीतर के अंतःकरण के तत्व को जानना चाहता है। लिंकन बार्नेट हो गए, उन्होंने आइंस्टाइन पर एक बहुत सुंदर और छोटी पुस्तिका लिखी, द यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टाइन। वहां पर उन्होंने डॉक्टर आइंस्टाइन के समय तक जितने भी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान हुए उनका उल्लेख किया है, समस्याओं का उल्लेख किया है जो भौतिकी के क्षेत्र में विद्यमान है। और वे यह कहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक एक मौलिक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। वह मौलिक समस्या क्या है? लिंकन बार्नेट की दृष्टि में लिंकन बार्नेट वैज्ञानिक है, विज्ञान में विज्ञान पर कॉलम लिखा करते हैं, तो वे कहते हैं कि मौलिक समस्या यह मनुष्य ही है। मैन इज हिज ओन ग्रेटेस्ट मिस्टरी। और वहां पर वे यह कहते हैं एक बहुत बड़ी विडंबना मनुष्य के साथ है। वह विडंबना क्या है? कि मनुष्य जिस मन के सहारे दुनिया की सारी चीजों को जानने की इच्छा करता है, उस मन को जानने की कभी इच्छा नहीं करता कि यह मन है क्या। यही विडंबना उसके साथ है। कितनी सटीक बात कह दी, मैं अपने इस मन से दुनिया को जानने का प्रयास कर रहा हूं। मन ही प्रथम औजार है ज्ञान का, पर कभी मैंने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि मन का स्वरूप क्या है। यह औजार जो काम करता है तो कैसे करता है? लिंकन बार्नेट अपनी दृष्टि से बात रख रहे हैं और केनोपनिषद में आध्यात्म की दृष्टि से बात रखी गई है। तो यहां पर शिष्य पूछता है कि आखिर वह तत्व क्या है जिसकी इच्छा से और जिससे प्रेरित होकर के मन अपने विषयों की ओर जाता है। ऐसा प्रश्न किया गया और उसका जो उत्तर दिया गया है वह उत्तर भी वैसा ही अद्भुत है जैसा कि प्रश्न है। जैसा शिष्य उसी प्रकार के गुरु। कहा उन्होंने उत्तर में, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। यह उत्तर है। उत्तर में क्या कहा? एक कान का भी कान है, एक मन का मन है, एक वाणी की वाणी है, एक प्राण का प्राण है, आंखों की आंख है। अतिमुच्य धीराः, ऐसा अगर जान ले तो वह धीर पुरुष प्रेत्य अस्माल लोकात् इस लोक से विदा लेने के बाद यानी मृत्यु के पश्चात अमृता भवन्ति अमर हो जाते हैं। यह उत्तर है। प्रश्न और उत्तर में संबंध कहां पर है? शिष्य ने पूछा था कि किसकी प्रेरणा और किसकी इच्छा से मन अपने विषयों की ओर जाता है। उत्तर दिया कि मन का एक मन है। इसका मतलब यह ले सकते हैं कि मन का एक मन है और उस मन की इच्छा और प्रेरणा से यह मन अपने विषयों की ओर जाता है। एक कानों का कान है, उसकी इच्छा से ये कान अपने विषय की ओर जाते हैं। एक आंख की आंख है जो इस आंख को देखने की प्रेरणा देती है। ऐसा यहां पर अर्थ ध्वनित होता है। अब इसको समझा कैसे जाए? आंख की आंख है तो वह आंख कहां है? आंख के भीतर ही होगी। यदि कोई कान का कान है तो कान कहां है? यह कान तो बाहर दिखाई देता है। और यदि कान का एक और कान हो, इसका तात्पर्य है कि वह भीतर ही होगा। इसी प्रकार प्राणों का प्राण वह प्राण के भीतर ही होगा। हम इस ढंग से इसको समझ सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कठोपनिषद में, वहां पर एक साधक निश्चय कर रहा है, पहले तो दोष देता है स्वयंभू को, जो स्वयंभू अपने आप उत्पन्न हुआ है। स्वयंभू का तात्पर्य यही है कि जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो अपने आप पैदा हो गया। तो यह जो साधक है स्वयंभू को दोष दे रहा है। परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् पराक् पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। इस एक श्लोक में कठोपनिषद के साधना के सारे सूत्र कह दिए गए संक्षेप में, और वे ही सूत्र यहां पर भिन्न रूप में दर्शित किए गए हैं। वहां पर क्या कहा जा रहा है? कठोपनिषद में साधक के द्वारा साधक कहता है परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू, ये जो स्वयंभू हैं इन्होंने इंद्रियों को बहिर्गामी बनाकर के मानो उन्हें नष्ट कर दिया। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, कोई क्या बनाएगा नष्ट करने के लिए? साधक ने कहा हां, जैसे मां किसी शिशु को जन्म दे और उसको नष्ट कर दे, ऐसे ही स्वयंभू ने इन इंद्रियों को बनाया और बहिर्गामी बनाकर के नष्ट कर दिया। अपनी बात समझाओ, साधक से कहा गया तो साधक ने कहा कि देखो बहिर्गामी ये इंद्रियां बनी हैं, इसलिए बाहर की ओर जाती हैं, बाहर की ओर देखती हैं। परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् पराक् पश्यति, पराक् माने बाहर की ओर विदाउट, नान्तरात्मन भीतर की ओर ये इंद्रियां देखती नहीं है। उपनिषद साहित्य में ये दो शब्द हैं महत्व के, पराक और प्रत्यक्, पराक विदाउट प्रत्यक विदिन। उस साधक ने क्या किया? कश्चित् धीरः, वह धीर था, एडवेंचरस था, उसमें धैर्य था, साहस था। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, जो प्रत्येक आत्मा है, भीतर गया हुआ आत्मा है, वह जो सत्य है ऐक्षत, उसको देख लिया। कैसे देखा? आवृत्त चक्षु, आंखों को बंद करके उसने उस तत्व को देख लिया जो भीतर छिपा हुआ था। यहां पर आंखें उपलक्षण है, सभी इंद्रियों को भीतर की ओर उसने मोड़ दिया। क्यों मोड़ा? अमृतत्वम इच्छन, अमरता की इच्छा करता हुआ। अमरता का तात्पर्य क्या है? एक तात्पर्य तो यह है कि जो यहां पर कहा गया है कि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो, उसके पश्चात वह अमर हो गया, आने जाने का उसका जो चक्कर था छूट गया। और उसका दूसरा तात्पर्य यह है, इसी जीवन में वह सारे बंधनों को काट लेता है और जीवन मुक्त होकर के विचरण करता है। ये दोनों ही अर्थ केनोपनिषद में आए हैं। यह चेदवेदी तथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदी महति विनष्टि, यह केनोपनिषद ही कहता है। इसी जीवन में उस सत्य को जान लो तो महान लाभ है, और नहीं जाना तो महान विनाश है। ये दोनों प्रकार के अर्थ केनोपनिषद में आए हैं अमरता के संदर्भ में। तो यहां पर भी ठीक वही बात प्रकारांतर से कही जा रही है। शिष्य ने पृच्छा की कि वह तत्व कौन सा है जिसकी इच्छा और प्रेरणा से इंद्रियां काम करती हैं, मन काम करता है। तो गुरु ने कहा कि देखो, आंखों की आंख, कानों का कान, प्राण का प्राण, मन का मन, वाणी की वाणी, भीतर की ओर ले जाने का वह प्रयास। जैसे एक सामान्य उदाहरण दें, भौतिक उदाहरण है, लौकिक उदाहरण। अच्छा, यह बल्ब किसकी प्रेरणा से और किसकी इच्छा से जलता है, पंखा किसकी इच्छा से डोलता है, हीटर किसकी इच्छा से काम करता है, कूलर किसकी इच्छा से चलता है, प्रेरित होता है, या जैसे पूछा जाए और कोई उत्तर दे कि बल्ब का एक बल्ब है, हीटर का एक हीटर है, कूलर का एक कूलर है, वह क्या है? बिजली है। बिजली की इच्छा और प्रेरणा से बल्ब जलता है, हीटर चलता है, कूलर काम करता है। तो मानो ठीक इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र का यह प्रश्न है कि किसकी इच्छा और प्रेरणा से इंद्रियां काम करती हैं। तो गुरु ने बताया कि आंखों की आंख, कानों का कान, भीतर चलो, यह कहा गया। अच्छा गुरु जी, आपने तो कहा कि एक आंखों की आंख, कानों का कान, मन का मन, तो फिर उसको कैसे जाने कि जैसे आंखों की आंख, तो क्या उसको देख सकते हैं? कानों का कान, तो क्या उसको सुन सकते हैं? वह मन का मन है आपने कहा, तो क्या हम उसके संबंध में कुछ मनन कर सकते हैं? प्राणों का प्राण, तो प्राण के स्पंदन का अनुभव हो सकता है? वाणी की वाणी, इसका मतलब कि क्या उसको बोल करके समझाया जा सकता है? कहा कि नहीं वत्स, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक गच्छति नो मनः, न विद्मो न विजानीमो यथैतत् अनुशिष्यात्। अन्य देव तत् विदितात् अथो अविदितात् अधी इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षरे। तीसरे मंत्र में मानो इस प्रश्न का उत्तर है। कहते हैं कि न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंखें नहीं जा पाती हैं, न वाग गच्छति नो मनः, वाणी वहां नहीं जा पाती है, मन भी नहीं जा पाता है, न विद्मो न विजानीमो यथैतत् अनुशिष्यात्। हम भी नहीं जानते हैं, न विद्मः न विजानीमः, और हम यह भी नहीं जानते कि हम किस प्रकार से तुम्हें समझा दें। यह समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि अन्यत एव तद विदितात्, वह विदित से अन्य है। जैसे विदित की एक श्रेणी है, हम पदार्थों को जानते हैं, जिन जिन पदार्थों को जानते हैं वे विदित की श्रेणी में आते हैं, पर आत्मतत्व विदित की श्रेणी से भिन्न है। इसीलिए कहा कि अन्यदेव तद विदितात्, विदित से भिन्न है, अविदितात् अधि, तो फिर कह दीजिए कि उसको जाना ही नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, वह अविदित से ऊपर है। इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षरे, ऐसा हमने उन अपने पूर्वेशाम, हमारे जो गुरुजन हो गए हैं, जहां से ज्ञान की परंपरा चली है, तो हमने अपने पूर्व पुरुषों से सुना है, इसी प्रकार जिन्होंने हमारे प्रति इसका आख्यान किया था। अब यह वैतर्किक प्रणाली से उस तत्व की ओर ले जाने की चेष्टा है। यहां पर गुरु ने कह दिया कि तुम कहते हो कानों का कान है, तो क्या सुनकर के उसे जाना जा सकता है? नहीं। आंखों की आंख है, इसलिए आंख से देख करके जान ले? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर आंखें नहीं जाती, वहां पर वाणी नहीं जाती, इसलिए वाणी के द्वारा बोल करके भी नहीं समझा सकते। मन ही नहीं जाता है, और मन नहीं जाता है इसलिए वाणी भी लौट आती है। अवांग मनस गोचर कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह, जहां से वाणी मन के साथ लौट आती है, क्योंकि मन ही प्राप्त नहीं कर सकता है। मन जहां जहां जाता है वाणी उसका अनुवर्तन करती है, और मन जिसको अपना विषय बनाता है वाणी उसे शब्दबद्ध कर दिया करती है। पर जहां मन ही नहीं जा पाता तो वाणी कैसे जाए। मन लौट करके आ गया उसे बिना पाए, इसलिए वाणी भी उसके साथ लौट करके आ गई। इस ढंग से उस तत्व के संबंध में यहां पर कहा गया है। तो यहां क्या कहते हैं, यही उस आत्म तत्व के स्वरूप का प्रवचन है। वह कौन सा है तत्व, वह चैतन्य तत्व क्या है, यह मानो भीतर में प्रविष्ट होकर के पाने की चेष्टा। जैसे श्री राम कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते थे, देखो संसार में सारी चीजें झूठी हो गईं, एक ब्रह्म वस्तु ही झूठी नहीं। कोई बोल करके बता नहीं सका आज तक झूठी का मतलब क्या है। किसी वस्तु को ओठों से लगा दें तो वस्तु झूठी हो जाती है। तो अभी तक कोई बोल करके नहीं बता सका कि ब्रह्म कैसा है, और इसलिए ब्रह्म वस्तु झूठी नहीं हुई। संसार की सारी चीजें झूठी हो गईं, शास्त्र झूठे हो गए, पर ब्रह्म वस्तु झूठी नहीं हुई। ठीक यहां पर वही है, बोल करके कोई बता नहीं सका, तो बता नहीं सका इसीलिए बहुत कठिनाई है कि तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। जिसको वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता तो उसे मैं समझाऊं कैसे कि वह तत्व कैसा है। तो फिर मान लेना गुरु जी कि वह अविदित है, कह दीजिए कि उसको जाना ही नहीं जा सकता है। नहीं नहीं, वह भी ठीक नहीं है, वह अविदित की श्रेणी से ऊपर है। तो फिर विदित विदित से भिन्न है। यहां पर इस ढंग से समझाया गया, वह विदित से भिन्न और अविदित से ऊपर। इसका मतलब यह है, यहां पर बताएंगे धीरे धीरे आगे चल करके कि वह किस प्रकार अनुभूति में आता है। जो ब्रह्म है या आत्मवस्तु है या चैतन्य है, वह अनुभूति का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। मन जाकर के उसके स्वरूप का आकलन नहीं कर पाता है। जैसे श्रुतियों में आप पढ़ेंगे, कभी तो यह कहा जाएगा, जैसे यहां पर कहा गया है कि मन वहां नहीं जा पाता है, और फिर यह भी कहा गया है कि मनसैव अनुद्रष्टव्यः, मन के द्वारा ही उसका दर्शन किया जाता है। अब ये विरोधी बातें मालूम पड़ती हैं। एक स्थान पर कहो कि मन वहां नहीं जाता है, और दूसरे स्थान पर कहो कि वह मन के द्वारा ही अनुद्रष्टव्य अनुभव में आता है, फिर मतलब क्या है। तो उसका आचार्य शंकर ने बहुत सुंदर अर्थ किया है, जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह उस तत्व के दर्शन करने में समर्थ होता है। आज हमारा मन मलिन है, मलिन मन से उसका अनुभव नहीं होता है, पर किससे होता है, जब बुद्धि सूक्ष्म हो गई, मन पवित्र हो गया, तब वह उस तत्व को देखने का अधिकारी होता है। मन के भीतर में अनंत शक्ति है, पर उस शक्ति का आज हमें बोध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता है, इसलिए कि मन के बहुत से अग्र हैं, मन बिखरा हुआ है, इसलिए उसमें भोथरापन है, पैनापन नहीं है। पर यदि हम किसी उपाय से मन को एकाग्र करें और एकाग्र करके उसके अपने ऊपर लगा दें, अपने ऊपर माने भीतर ही, मन को हमने एकाग्र किया और भीतर ही हमने मन के ऊपर उसे लगा दिया, केंद्रित कर दिया, तब क्या होता है, तब उसमें बड़ी पेनिट्रेटिंग पावर आ जाती है और वह फिर अपनी ही परतों को काटने लगता है। यह विलक्षण सिद्धांत है और साधना की प्रक्रिया है अध्यात्म के क्षेत्र में। जैसे हमारा मन एकाग्र तो होता है, पर अपनी रुचि के विषय में। यदि मुझे संगीत में रुचि है तो मैं अपने मन को संगीत में एकाग्र करता हूं। यदि चित्रकारी में रुचि है तो मैं मन को चित्रकारी में एकाग्र करता हूं। एकाग्र करने का क्या मतलब? दीन दुनिया से अपने मन को हटा करके मैं चित्रकारी में निविष्ट करता हूं, इसलिए बहुत बढ़िया चित्र अंकित हो जाता है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति जिस विद्या में माहिर है उसमें उसका मन एकाग्र हो जाता है, उसकी रुचि है। पर यह जो ध्यान की एकाग्रता है जिसके सहारे आत्म तत्व का बोध होता है, उस एकाग्रता का लक्षण अलग है। वह अलग लक्षण क्या है?